नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा के खिलाफ चेतावनी दी। इसराइल की सेना ने हमास की सैन्य शाखा के नेता इज अल-दीन अल-हद्दाद को मारने का दावा किया। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों के सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल है। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मुहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। 5 प्लेटों पर संस्कृत में शिलालेख है जबकि 16 प्लेटों पर तमिल में शिलालेख है। कुलुतुंगा चोल प्रथम की मुहर लगी प्लेटों के एक अन्य समूह में भी तमिल शिलालेख है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। ASML के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ फुके ने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता सेमीकंडक्टर क्षेत्र कई नए अवसर प्रदान करता है और कंपनी क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के लिए वर्ष 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद ये उनकी दूसरी नॉर्डिक यात्रा होगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने कहा था कि ताइवान को स्वतंत्र घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे स्वयं को पहले से ही एक संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। अमरीका लंबे समय से ताइवान का समर्थन करता रहा है, जिसमें अमरीकी कानून के अंतर्गत उसे आत्मरक्षा के साधन उपलब्ध कराना भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और सी चिनफिंग ने ताइवान मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। ट्रंप ने यह भी कहा कि चिनफिंग ताइवान के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और किसी भी प्रकार की आजादी की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध करते हैं। इसराइल ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख और 2023 में हुए हमलों के सूत्रधारों में से एक इज अल दीन अल हद्दाद को मार गिराया है। इन हमलों के बाद गजा युद्ध हुआ था। इसराइली सेना ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा में हुए हवाई हमले में मारा गया। सेना ने कहा कि वे हमास के सैन्य नेतृत्व में बचे हुए अंतिम वरिष्ठ कमांडरों में से एक था। अल हद्दाद ने अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद सिनवार की मृत्यु के बाद ये पदभार संभाला था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति सी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलूच यकजहती कमेटी के मुख्य आयोजक डॉक्टर महरंग बलूच ने बलूचिस्तान में असहमति से निपटने के पाकिस्तान के रवैये की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं के खिलाफ जबरन गायब करने, गैर न्यायिक हत्याओं और डराने धमकाने की रणनीति में वृद्धि कर रहा है। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी ने 19-21, 22-20, 21-16 से जीत हासिल की। फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा के खिलाफ चेतावनी दी। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।